على عباد ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو مسلم ہیروز آفٹر دا صحابہ اینڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کلاس مکمل ہوئی اور اب جو ہے وہ ہم پیچھے جا رہے ہیں. ہم نے آج سے جو ہے نا وہ پیچھے کا سفر شروع کیا ہے. تو پہلے جو ہے وہ آخری دور کی بات ہوئی، پھر اس کے بعد اس سے پیچھے والے دور کی، اور اس کے بعد پھر اب آپ جو اگلی کلاس دیکھیں گے تو اس میں اس سے بھی پیچھے والے دور کی بات ہوگی. آداب والی کلاس آج نہیں ہوگی کیونکہ عارف انکل جو ہیں وہ سفر پر ہیں، تو وہاں سے وہ ریموٹلی کلاس نہیں کریں گے. تو یہاں پہ انشاءاللہ اگلی ایک نئی کلاس کا سلسلہ ہم فی الحال شروع کر رہے ہیں. پچھلی کلاس میں کہاں پہ بات ختم ہوئی تھی، کون بتائے گا؟ کلاس ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی تو تھی جی. ہاں سائن کیا ہوئی؟ جی ریحان. نسبت اتحادی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حاصل تھی. تو ریحان بھائی نے یہ جواب تو صحیح صحیح دے دیا. اب دوسرا سوال اس کے اوپر آپ کے پیچھے کی ریویژن کے لیے کہ یہ نسبت اتحادی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے حاصل ہوئی، ابو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ نسبت اتحادی حاصل ہونے کی وجہ کیا بنی؟ جی نشان آپ بتائیے. اپنے نفس کو توڑ کر، اپنے نفس کو مار کر، اور کوئی جی جی اور مصطفیٰ ٹھیک ہے. نفس کو، ہاں نفس کے لیے جو سب سے زیادہ اپروپریٹ لفظ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے فنا کر دینا. فنا، فنا کا مطلب بالکل ختم کر دینا، جیسے کہ وہ تھا ہی نہیں، جیسے کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو فنائے نفسی کا جو ہے نا وہ لفظ ہمارے مشائخ استعمال کرتے ہیں. سورہ لیل میں حضرت ابوبکر صدیق عنہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، کہ ہم ان کو اتنا دیں گے کہ وہ راضی ہو جائیں گے. چلیں یہ بھی بات ہوئی تھی ویسے پچھلی کلاس کے اندر، ٹھیک ہے جزاکم اللہ. تو اس کو فنا کرنا کہتے ہیں. ابوبکر صدیق عنہ انہوں نے فنا فی الشیخ کا مقام حاصل کیا، کیونکہ ابوبکر صدیق عنہ کے شیخ کون تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے. ٹھیک ہے، ہمارے مشائخ سمجھاتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو شیخ کے سامنے فنا کرتا ہے اسی کو فنا فی الرسول عطا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور جو رسول کے سامنے اپنے آپ کو فنا کرتا ہے اس کو فنا فی اللہ عطا ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی فنا فی اللہ کیا چیز ہے؟ بندگی کی، بندگی کا کمال، بندگی کی پرفیکشن اس کو عطا ہو جاتی ہے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہی کس لیے؟ ہمیں بندگی کے لیے بھیجا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں پھر ہم نے جو ہے وہ فیملیز کے بارے میں بات کرنی شروع کر دی تھی. نبی علیہ السلام کے داماد، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داماد، ان میں کیا سملیرٹیز تھیں؟ نبی علیہ السلام کی بیٹیاں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں، ان میں کیا سملیرٹیز تھیں؟ حتیٰ کہ نواسوں تک بات چلی گئی تھی. ٹھیک ہے نا، گرینڈ سنس تک بات چلی گئی تھی. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کتنی ساری جو ہیں وہ مماثلتیں مشائخ نے لکھی ہیں. اچھا، اب آخری بات مماثلتوں کی، کے ٹاپک کو تھوڑا سا ہم نے اور چلانا تھا پھر ہم آگے بڑھیں گے، وہ کہ مرض وفات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب انتقال ہوا تو اس میں جو بیماری ہوئی تھی نا، بیماری کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس میں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مرض وفات میں بھی سملارٹیز تھیں. اتنی ساری سملارٹیز لکھی ہیں کہ دونوں کا انتقال جو ہے وہ کس وجہ سے ہوا تھا؟ क्या एक सबब बना था, जाहिरी सबब। जी अफान, बुखार की वजह से इंतकाल नहीं होता। बुखार जो है ना, ये वजह नहीं होती। बुखार जो है ये सिम्टम होता है, ये इंडिकेशन होता है, ये अल्लाह ताला की रहमत होती है बुखार। ठीक है, ये अल्लाह ताला की रहमत होती है। क्यों? ये बुखार सिर्फ ये बताता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। ठीक है ना, अगर हमें बुखार ना हो तो हमें पता ही नहीं चले कि अंदर क्या चल रहा है, क्या गड़बड़ चल रही है, और हम कभी भी डॉक्टर के पास ना जाए। खैर, जी अब्दुल्ला, जहर। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया मुफ्ती साहब ने। अरे छोटे थे मुफ्ती साहब के। जहर जो है ना, वो जाहिरी, यहाँ पे भी ऑनलाइन जवाब दिया था पॉइजन। ठीक है, ये जाहिरी सबब बना था, और दोनों को जहर जो है वो यहूदी ने दिया था। ठीक है ना, यहूदी ही जहर देने का सबब, यानी जहर दिया था उसने, और फौरन दोनों का इंतकाल नहीं हुआ था, बल्कि कुछ अरसे के बाद जो है वो जहर का असर नमूदार हुआ, और फिर वो एक जाहिरी सबब बन गया इनके बीमारी का और इनके इंतकाल का। जी सर,
जैनब
जैनब तो नाम था, लेकिन हारिस आप कह रहे हैं तो वही होगा। हमने, अच्छा, उसकी नात में हमने सुना था, हमने सीरतुल नबी के टॉपिक में जब खैबर का मौजू पढ़ रहे थे तो उसमें इनका जिक्र, इसका जिक्र आया था, इस औरत का। अच्छा, और ये के अजीब के, जब जहर मिला था तो नबी अलैहिस्सलाम के मामले में भी यही हुआ था कि एक एक सहाबी जो है उन्होंने जहर का निवाला खा लिया था और उनका इंतकाल हो गया। ठीक है, बाकी को नबी अलैहिस्सलाम ने रोक दिया था। और अबू बकर सिद्दीक के मामले में भी ऐसे ही हुआ कि एक शख्स का इंतकाल हो गया था और फिर अबू बकर सिद्दीक को पता चल गया, वो जो है वो बच गए, लेकिन बाद में उनके ऊपर भी असर हुआ। अच्छा, फिर इनके ऊपर भी बड़ा शदीद बुखार हुआ था, 2 हफ्ते तक तकरीबन जो है ये अलालत इनकी जारी रही थी। ठीक है, इन्होंने लिखा है कि सो इट मीन्स दैट द ज्यूज किल्ड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह से कहते तो नहीं है कि ज्यूज किल्ड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिकॉज वो एक यहूदी औरत थी, उसने जो है वो जहर दे करके मारने की कोशिश करी थी। वो अगरचे कि उसके अंदर कामयाब नहीं होती, क्योंकि जब किल्ड का लफ्ज है ना, कत्ल का जो लफ्ज है ना, ये इस्तेमाल होता है इमीडिएट डेथ के लिए। ठीक है, तो अगर ऐसे इमीडिएट डेथ ना हो, या इवन 2-3 दिन में इंतकाल ना हो, तो फिर उसको जो है वो कत्ल का लफ्ज इस्तेमाल या किल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जाता उसके लिए। बहरहाल उलमा जो लिखते हैं, हाँ, अटेम्प्ट टू किल, किल जरूर कह सकते हैं, उलमा जो लिखते हैं वो ये कि अल्लाह ताला ने दोनों हजरात को जो है ना वो शहादत का मुकाम अता फरमाना था, क्योंकि जहर से हलाकत जो है ये भी शहादत की किस्मों में से एक किस्म है। वैसे शहादत की 2 किस्में होती हैं, एक तो होती है कि मैदान जंग में दुश्मनों से लड़ते हुए कोई शहीद हो जाए, ये जो है ना वो असल शहादत कहलाती है, और बाकी जो है ना वो शहादतें जैसे कि डूब करके मर जाना, या पेट की बीमारी की वजह से इंतकाल हो जाना, या जहर की वजह से इंतकाल हो जाना, ये शहादतें कहलाती हैं आखिरत में, आखिरत के हिसाब से ये शहादत कहलाती है। दुनिया में शहादत जो है वो मैदान जंग वाली मौत जो है ना वो शहादत कहलाती है। तो अल्लाह ताला ने मैदान जंग वाली शहादत से तो उनको महफूज रखा। उसकी भी उलमा ने बड़ी बड़ी मजे की जो है ना वो वजह लिखी कि ये जो हजरात थे ना दोनों, नबी अलैहिस्सलाम और अबू बकर सिद्दीक, इनका मुकाम और मर्तबा इतना बुलंद था कि अल्लाह ताला ने उनको मैदान जंग वाली शहादत क्यों अता नहीं की, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि तलवारें पड़ती हैं, बदन कटता है, खून निकलता है, खाक में, जमीन की मिट्टी के अंदर जो है वो आपको लथपथ होना पड़ता है, और अच्छी खासी उसके अंदर जो है वो जाहिरी तौर पर जो है ना वो जाहिरी तौर पर जिल्लत और रुसवाई वाला सामान होता है। ठीक है, कि आप जो है वो रोन दिए जाते हैं, कभी घोड़े ऊपर से आकर के गुजर जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो अगरचे कि ये कोई बुरी बात नहीं है, बड़े बड़े हजरात को शहादत मिली, और उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को इसी तरह की शहादत मिली ना, जिसमें खून के फवारे निकले और उनका जिस्म जो है वो कटा, और क्या क्या कुछ नहीं हुआ, पानी पिलाया गया उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को, और पानी जो है ना वो बाहर निकल गया यहाँ से। उस वक्त तबीब ने देख करके कहा कि अब ये नहीं बचाएंगे, अब इनका इंतकाल हो के रहेगा इससे, क्योंकि पानी, यानी उनकी जो है ना वो ट्रैकिया वो रप्चर हो चुकी थी, उनका जो है वो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो खत्म हो चुका था। बहरहाल, तो ये उलमा ने वजह लिखी कि इनको मैदान जंग वाली शहादत अल्लाह ताला ने नहीं दी, बल्कि बिस्तर वाली शहादत दी। अच्छा, और ये कि इन दोनों के लिए जो है वो जो 2 हफ्ता ये बीमार रहे हैं दोनों हजरात, तो मस्जिद जाना जो है वो दोनों के लिए मुश्किल हो गया था, और दूसरे हजरात की मदद से इनको मस्जिद जो है वो ले जाया जा रहा था। नबी अलैहिस्सलाम के आखिरी अय्याम के बारे में हमने पढ़ा था ना।
किसी ने
ये किसी के है जहन में भी, किसने जहर दिया था? हाँ, यहूदी का तो लिखा हुआ है, लेकिन उसकी तफसीर जो है ना वो इंशाल्लाह आपने अच्छा सवाल किया, मैं भी सोच रहा था कोई सवाल करेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, जवाब ये होगा वो मुझे नहीं मालूम, इंशाल्लाह चेक करके बताएंगे। ठीक है, अच्छा याद है नबी अलैहिस्सलाम की आखिरी अय्याम के बारे में पढ़ रहे थे, तो एक वक्त आया था जब नबी अलैहिस्सलाम जो है वो 2 सहाबा के सहारे से, गालबन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और अली रज़ियल्लाहु अन्हु शायद ये दूसरे थे, उनके सहारे से जो है मस्जिद में तशरीफ लाए थे। तो उस मौके के अशआर किसी को याद हैं? आप तो माशाल्लाह नातें पढ़ने वाले हैं। हाँ,
भाई
आपके ही याद दिलाने भी पड़े थे, बोलिए
जी
जी। ठीक है, तो उस वक्त अज़र जी की हमने पूरी कॉपी करी थी, इन्होंने याद दिलाया था कि अज़र जी ऐसे अशआर पढ़ते हैं। तो क्या था, कदम है बिलाल आज चलने से आरी, बस अब अलविदा अलविदा है हमारी। कदम है बिलाल आज चलने से आरी, बस अब अलविदा अलविदा है हमारी। ठीक है, तो इसी तरह का मामला जो है वो बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ भी हुआ था। दोनों अपने आखिरी वक्त में भी जो है ना वो दीन की फिक्र के अंदर ही लगे हुए थे, दीन की मेहनत के अंदर ही लगे हुए थे, और दीन के बारे में जो है वो लोगों को बता रहे थे, लोगों को अहकामात दे रहे थे। हत्ता कि नबी अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल आखिरी वक्त में हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ एक लश्कर रवाना किया था, राइट, याद है ना? ठीक है, रोमन से लड़ने के लिए, और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी मुसनाह शेबानी रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जो है ना वो एक लश्कर रवाना किया था। मदीना मुनव्वरा के ऊपर लोग हमला करने के लिए आ रहे थे, तो मुसनाह शेबानी रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो है वो उनसे मुकाबला करने के लिए भेजा था। उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु वाला लश्कर जो था वो नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में रवाना नहीं हो सका था, क्योंकि बिल्कुल बर्जुल वफात आ चुका था और वो लश्कर जो है वो रुक गया था। किसने उनको रवाना किया? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने रवाना किया, यानी खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को रवाना किया। और मुसनाह शेबानी रजी अल्लाह तआला वाला लश्कर, ये भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की जिंदगी में वो रवाना नहीं हुआ, बल्कि वो वेट करता रहा। किसने रवाना किया? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के खलीफा ने उस लश्कर को रवाना किया, यानी उमर फारूक रजी अल्लाह तआला, उन्होंने उस लश्कर को रवाना किया। दोनों का इंतकाल पीर के दिन हुआ, मंडे दोनों का इंतकाल हुआ। दोनों की उम्र, पिछली दफा इन्होंने भी कहा था कि दोनों की एज सेम थी, एज तो सेम नहीं थी, लेकिन इंतकाल के वक्त जो दोनों की एज जो है वो 63 साल हो चुकी थी, 63 ईयर्स सेम हो चुकी थी, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल 2 साल के बाद हुआ था। अच्छा, दोनों की वफात जो है वो तदफीन रात के वक्त की गई, दोनों ने मीरास में कुछ भी नहीं छोड़ा, बिल्कुल खाली हाथ इस दुनिया से गए, इनका कोई तरका था ही नहीं जिसकी आप बाद में जाकर जो है ना वो बंटवारा होता, विरासत तकसीम होती। अच्छा, कमाल मुशाबहत इनको जो थी, तो इसमें एक और भी एक ख्वाब नबी अलैहिस्सलाम के अहादीस की किताबों में नकल है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक ख्वाब देखा था, देखा कि नबी अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं और आप ससरम के ऊपर बारिश बरस रही है, जिससे आप ससरम पूरे के पूरे गीले हो रहे हैं, भीग रहे हैं, और आप ससरम के साथ जो है ना वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु खड़े हैं, और वो बारिश उनके ऊपर भी पूरी की पूरी बरस रही है, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के ऊपर भी, और उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु अपने आप को ख्वाब में देखते हैं कि वो भी बराबर में खड़े हुए हैं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के ऊपर जो पानी पड़ रहा है ना उससे जो छींटे उड़ रहे हैं ना वो छींटे उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के ऊपर पड़ रहे हैं। तो उमर रजी अल्लाह अन्हु ने यह ख्वाब नबी अलैहि सलाम को सुनाया, तो आप ने जवाब दिया कि हाँ, क्योंकि अबू बकर को मेरे साथ कामिल मुनासबत है ना, तो ये जो बारिश हो रही है ये उलूम नबूवत की बारिश, यानी ये इल्म की बारिश हो रही है, और वो कौन सा इल्म? इल्म नबूवत, नबीवी इल्म। ठीक है, नबीवी इल्म क्या होता है कि जिसके अंदर हर चीज शामिल होती है, अल्लाह ताला के साथ विलायत, दोस्ती भी, ठीक है, और दुनियावी उलूम भी सारे के सारे जिनकी जरूरत होती है एक नबी को, वो उलूम भी सारे के सारे इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, इसको उलूम नबूवत कहते हैं। दूसरे किस्म के उलूम होते हैं जिनको उलूम विलायत कहते हैं। ठीक है, उम्मत के अंदर सबसे ज्यादा उलूम नबूवत किसको मिले, जैसे कि इस हदीस से भी साबित है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को। ठीक है, और सबसे ज्यादा उलूम विलायत किसको मिले, ये अगर किसी को बताओ, सबसे ज्यादा उलूम विलायत किसको मिले?
अच्छा
आपको तो मैं इनकार नहीं कर सकते। हाँ, हजरत अली करम अल्लाह वजहू को उलूम विलायत मिले। हमारे जो तसव्वुफ के सिलसिले हैं ना, आपने नाम सुने होंगे, नक्शबंदी सिलसिला का नाम तो दायरे सुना ही होगा हम सबसे, दूसरा है कादरी, कादरी सिलसिला, फिर सुहरवर्दी सिलसिला, फिर चिश्ती सिलसिला। ठीक है, तो इनमें से जो नक्शबंदी सिलसिला है ना, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से चला है ये। ठीक है ना, यानी अगर हम अपने शेख हजरत जीप तौन का के ऊपर उनके शेख को देखें, ठीक है ना, फिर उनके शेख को देखें, फिर उनके शेख को देखें, हजरत अब्दुल मालिक सिद्दीक रहमतुल्लाह, कभी आप सुन रहे हैं, ठीक है, हजरत जी के दादा शेख थे हजरत पीर फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह, फिर उनकी ऊपर, फिर उनके ऊपर, तो ये चलते 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 कहाँ पहुंचेगा, अबू बकर सिद्दीक रहता ना तक ये सिलसिला पहुंचेगा। ठीक है ना, जबकि जो चिश्ती और कादरी और सुहरवर्दी मशायख होते हैं, उनके ऊपर मशायख का अगर आप सिलसिला देखें तो वो कहाँ पहुंचेगा, वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला तक पहुंचेगा। ठीक है, तो इसी वजह से नक्शबंदी जो सिलसिला है ना, उसको सिद्दीकी सिलसिला भी कहते थे। पहले सिद्दीकी सिलसिला कहते थे, फिर उसके बाद नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया में तशरीफ लाए, तो अल्लाह ताला ने उनको सिखाया, यानी इल्हाम कहते हैं उसको, कि भाई ऐसे ऐसे जिक्र करेंगे ना तो फिर आपको अल्लाह ताला की विलायत मिल जाएगी। तो चूंकि उन्होंने जो है वो ये जिक्र के तरीके बताए, तो इस वजह से इस सिलसिले का नाम जो है ना फिर नक्शबंदी सिलसिला पड़ गया, वरना असल में ये सिद्दीकी सिलसिला था। ठीक है, तो मशायख जो है वो लिखते हैं कि ये जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को ये मुकाम मिला था, तो हमें भी चाहिए कि हम भी वैसे बनने की कोशिश करें जैसे कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु बने, ताकि हमें भी ये मुकाम मिले। ठीक है, इस तरह का मुकाम जो हमारे जमाने में मिल सकता है, जितना मिल सकता है उतना तो मिले ना भाई। ठीक है ना, 1400 साल गुजरने के बाद अब वो तो हमें हरगिज नहीं मिल सकता, लेकिन जो 1400 साल के बाद जितना मिल सकता है उतना तो मिले ना। ठीक है, तो वो कैसे मिलेगा कि अपने मशायख से बहुत मोहब्बत करना, बहुत मोहब्बत करना, और दूसरी चीज ये कि इत्तेबाए सुन्नत। ठीक है, शेख से मोहब्बत और इत्तेबाए सुन्नत, ये दो चीजें हैं कि जिससे कि जो है ना वो अल्लाह ताला अपने शेख के साथ ऐसी निस्बत अता फरमाते हैं। ठीक है, इत्तेबाए सुन्नत ये जब लफ्ज आ जाए तो फिर आज के जमाने में बड़ा जरूरी हो जाता है कि सुन्नत को एक्सप्लेन भी करके आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो कोई बताएगा कि सुन्नत किस चीज को कहते हैं, सुन्नतें किन बातों को कहते हैं, कोई पता है? बाकी आजाद को भी पता तो है, लेकिन वो हाथ खड़े करने से जरा शर्माते हैं लगता है। चले, दाऊद भाई ने नबी अलैहिस्सलाम की आदतें, आदात, हैबिट्स, ठीक है ना, उसको सुन्नत कहते हैं। यानी जो काम नबी अलैहिस्सलाम ने अक्सर किए ना, ठीक है ना, एक तरीके के से किए, तो उसको सुन्नत कहते हैं। कोई काम नबी अलैहिस्सलाम ने कभी कभी किया तो उसको सुन्नत नहीं कहते। जैसे कल ही बात हो रही थी ना, हाँ, कल ही के बयान के अंदर सूरह बनी इसराइल की तफसीर के अंदर, कि नबी अलैहिस्सलाम मगरिब की नमाज में सबसे मुख्तसर तिलावत किया करते थे, और फजर में जो है वो सबसे लंबी तिलावत किया करते थे, फिर उसके बाद जोहर और जुमा में उससे छोटी तिलावत करते थे, और असर और इशा में उससे छोटी तिलावत करते थे, मगरिब में सबसे छोटी तिलावत करते थे। लेकिन एक दफा नबी अलैहिस्सलाम ने मगरिब में सूरह अरफात की तिलावत कर दी। अरफात पता है कितनी बड़ी है, राइट? बहुत लंबी है सूरह अरफात, उसकी तिलावत कर दी, सूरह मुरसलात की तिलावत कर दी मगरिब के अंदर। लेकिन वो सुन्नत नहीं बनी, क्योंकि वो एक आध दफा नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे किया। कभी जो है वो फजर के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने मुआवज़तैन, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ी, बस खत्म हो गई फजर के बाद। ये सुन्नत नहीं है। हदीस में इसका जिक्र है कि आप ने ऐसे किया, लेकिन ये सुन्नत नहीं बन गई, क्योंकि आप की आदत ये नहीं थी। ठीक है, तो सुन्नत की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। हर हदीस से सुन्नत का पता नहीं चलता। ये नहीं है आपने बुखारी शरीफ खोली, उसके अंदर एक हदीस पढ़ो, अच्छा ये नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे किया था, इसका मतलब है कि ये सुन्नत है। नहीं, ये नहीं है, ऐसे नहीं है। ठीक है जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आराफ, सॉरी, अरफात नहीं, अरफात तो है भी नहीं कोई सूरत, आराफ कहना चाह रहा था। जजाकअल्लाह। द एक्शन परफॉर्म बाय प्रोफेसर लॉसम, नहीं यही तो आपको समझा रहे हैं, नॉट ऑल एक्शन परफॉर्म बाय द प्रोफेसर आर सुन्नत है। ठीक है, सूरह आरा जी, जजाकअल्लाह, यहाँ से भी इसलाह हो गई थी। व्हाट इज तिलावत? अच्छा, दे हैव इट ऑल थिंग्स दैट दे आल्सो डिड। व्हाट इज तिलावत? बहुत अच्छा सवाल है वैसे। तिलावत क्या है भाई? तिलावत किस चीज को कहते हैं? मतलब कुरान मजीद को पढ़ना। मेरे ख्याल में इनको जिन्होंने सवाल किया है, उनको तो इतना पता होगा कि कुरान मजीद के पढ़ने को तिलावत कहते हैं। तो सवाल क्यों किया आपने? सिर्फ इसी वजह से आप लोगों को पढ़वा रहे हैं। सिर्फ पढ़ना बहुत जरूरी है। अरबिक कॉन्जुगेशन, ठीक है, रेसिटेशन ऑफ द कुरान जी। कुरान
कुरान को अच्छे अंदाज में पढ़ो।
को अच्छे अंदाज में पढ़ना, नहीं नहीं तिलावत का जो लफ्ज है ना, ये निकला तला यतलू, तिलावतन। ठीक है, तला यतलू ये इसके वर्ब्स हैं, और तिलावतन जो है ना ये इसका नाउन है, आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, तला यतलू का मतलब होता है किसी को बिल्कुल जैसे अंदाज में उसने कोई चीज पढ़ी थी ना, बिल्कुल उसी अंदाज में उसको कॉपी करके पढ़ना, बिल्कुल उसी अंदाज में उसको कॉपी करके पढ़ना, इसको तिलावत करना कहते हैं। तो हम तिलावत कुरान मजीद की जो करते हैं, हम किसको कॉपी कर रहे होते हैं? पीछे वाले नहीं, पीछे तो अंकल बैठे हैं जी अब्दुल्ला। हम अल्लाह ताला को कॉपी कर रहे होते हैं। सुभान अल्लाह, कभी सोचा आपने? हम अल्लाह को कॉपी कर रहे होते हैं क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। ठीक है ना, और अल्लाह ताला ने अपने कलाम को जो है वो, और अपने कलाम को सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि उस कलाम के जो लहजे हैं पढ़ने के, वो भी इस उम्मत को अता फरमाए अपने नबी अलैहिस्सलाम के जरिए से। कितना बड़ा एजाज है, इससे बड़ा एजाज समझ में नहीं आता और क्या हो सकता है किसी हम जैसे इंसान को। है? अच्छा, हमने एक दफा पाइसिस के अंदर बयान किया था, पाइसिस वालों ने बुलाया था, तो वहां पे जाना, वो इसी टॉपिक के ऊपर कुछ बयान हुआ, तो हमने उनको कहा कि कभी आपने आपने सोचा कि बकरा जो है ना, वो उसका भी मुंह ऐसे ही होता है बिल्कुल जैसे हमारा मुंह है। बकरे से तो सब वाकिफ है, बकरे ईद की वजह से, तो बकरे के मुंह के अंदर भी जो है ना, वो ऐसी जुबान होती है, बिल्कुल खाते भी हैं लोग उसको, लेकिन जुबान बिल्कुल ऐसी शक्ल की होती है, उसके दांत भी बिल्कुल ऐसे होते हैं, ऊपर जो है उतने दांत होते हैं, नीचे इतने सारे दांत होते हैं। ठीक है ना, उसके जो है वो तालू भी होता है, उसके नीचे भी होता है, उसका जबड़ा भी होता है, बिल्कुल कॉपी एक जैसे मुंह। लेकिन बकरा जो है ना, वो तिलावत नहीं कर सकता, राइट? वो सिर्फ भें 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 या मैं की आवाज निकाल सकते हैं, राइट? और कोई आवाज ही नहीं निकाल सकता। भाई क्या फर्क है मेरे मुंह में और उसके मुंह में, क्या फर्क है? लेकिन मैं तिलावत कर सकता हूँ, वो तिलावत नहीं कर सकता। कोई दूसरा जानवर, कोई दूसरी मखलूक जो है, वो तिलावत नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ने इंसान को ये एजाज अता फरमाया। ठीक है ना, तो इसी वजह से जो है ना, वो इंसान की पिटाई भी सबसे ज्यादा होती है जब वो नेमतों की कदर नहीं करता। ठीक है, तो वो एक अलग टॉपिक है क्योंकि कुछ हजरात के साथ बात हुई है उस पर जी। ये भी अल्लाह ताला के कलाम है। हाँ, ये है तो ये कलाम, ठीक है, लेकिन ये जो है ना, वो लिखी हुई फॉर्म के अंदर आए हैं। ठीक है, लिखी हुई फॉर्म में आए हैं, तो उलमा ने इनके लिए भी कलाम का लफ्ज इस्तेमाल किया। ठीक है, उलूम कुरान किताब के अंदर अभी कुदरतन आपके सवाल से पहले अल्लाह ने जवाब भिजवाया है। इनके लिए भी कलाम का लफ्ज है जी।
जो उम्र
उमूमी तौर पर उनके यहाँ हिफ्ज नहीं है, लेकिन तौरात के हाफिज मौजूद हैं, मौजूद थे कम अज कम, अब तो नहीं है क्योंकि अब तो तौरात को उन्होंने चेंज कर दिया है, लेकिन जिस तादाद में, जिस कसरत के साथ कुरान मजीद के हुफाज इस उम्मत में पैदा हुए, अल्लाह ताला की तौफीक से पैदा हुए, इस कुरान की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने जो है वो बच्चों की दिलों में पैदा कर दिया, उनके माँ बाप के दिलों में पैदा कर दिया, कुरान मजीद हिफ्ज करो, कुरान मजीद हिफ्ज करो, उस तरह से उसके अशरे अशीर भी नहीं हुआ किसी दूसरी उम्मत के अंदर, ठीक है ना। लेकिन तौरात के हाफिज, इंजील के हाफिज जो है वो मौजूद हुआ करते थे थोड़ी तादाद में बहुत, ठीक है। तो सुन्नत जो है ना, एक तो बात हो गई कि नबी अलैहिस्सलाम की आदतों को सुन्नत कहते हैं, सिर्फ आप किसी फेल को सुन्नत नहीं कहते। और दूसरी बात यह है कि सुन्नतें जो है ना, ये तीन दर्जे की सुन्नतें होती हैं, तीन लेवल्स होते हैं सुन्नत के, ठीक है ना। एक लेवल जो है वो होता है जाहिरी सुन्नतें, आउटवर्ड सुन्नत, ठीक है ना, जैसे कि सर को ढांप करके रखना, इमामा पहनना, या जो है वो सफेद कपड़ा पहनना, नबी अलैहिस्सलाम पसंद किया करते थे सफेद सफेद लिबास, किस तरीके से जो है वो नमाज सुन्नत तरीके से अदा करना, वजू सुन्नतें होती हैं वजू के अंदर, सीधा पैर जो है वो अच्छी जगह में दाखिल करना, उल्टा पैर बायां पैर जो है वो जैसे वॉशरूम जगह तरह की जगह में बायां पैर दाखिल करना, ये सारी जो है ना ये जाहिरी सुन्नतें हैं, ठीक है ना। और ये सुन्नतें ये सारी की सारी बहुत अहम है, इनकी कोई कम अहमियत नहीं है, बहुत अहम है सारी की सारी जाहिरी सुन्नतें। लेकिन ये एक कैटेगरी है सुन्नत की। सुन्नतों की दूसरी कैटेगरी क्या है, कोई बताए?
और कोई
और कोई? आपने तो दोनों हाथ खड़े कर लिए। जी जी नहीं, तो यार सुन्नतों की दूसरी कैटेगरी या दूसरा दर्जा कौन सा कहलाता है? नहीं। अच्छा, बाय द वे, सुन्नत मौकदा के बारे में हमें काफी पता चल रहा है कि बच्चों को जो है ना उस सुन्नत मौकदा का नहीं पता होता है, ठीक है। तो जिनको नहीं पता सुन्नत मौकदा, वो सुन्नतें हैं नमाजों के अंदर कि जो के नबी अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा ताकीद के साथ अदा किया करते थे, छोड़ा नहीं करते थे, ठीक है ना। तो फजर की 2 रिकत सुन्नत जो होती है वो सुन्नत मौकदा है, जोहर की फर्ज से पहले 4 रिकत और फर्ज के बाद 2 रिकत ये सुन्नत मौकदा है, इसको छोड़ना नहीं है हमने। सफर में तो आप छोड़ सकते हैं जोहर की सुन्नत मौकदा को, लेकिन अदरवाइज घरों के अंदर नहीं छोड़ सकते, यानी जब आप सफर में नहीं है तो आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अच्छा, एक और सुन्नत मौकदा का पता चला जिसका कि अक्सर सऊदी अरब में रहने वालों को पता नहीं, क्यों नहीं पता, क्योंकि वो यहाँ पे कोई पढ़ता ही नहीं है, वो जो है ना वो उनकी वजह से समझते हैं कि यही नहीं, जुम्मे की सुन्नत मौकदा। मुझे हैरत हो गई जब मैंने मुझे पता चला कि कुछ लोगों को पता ही नहीं था कि ये सुन्नत मौकदा, ठीक है। जुम्मे की 2 रिकत जो फर्ज होती है ना, जो खुतबे के बाद इमाम साहब पढ़ाते हैं, उससे पहले 4 रिकत सुन्नत मौकदा है, उसके बाद 4 रिकत सुन्नत मुअक्कदा है, और फिर 2 रिकत सुन्नत मुअक्कदा है, ठीक है। तो सुन्नत मुअक्कदा जो है वो लाजमन पढ़नी है हमने, जब हम सफर में नहीं है तो हमने लाजमन पढ़नी है। अगर पहले वाली सुन्नत मुअक्कदा नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो खुतबा यहाँ पे शुरू कर देते हैं, टाइम ही नहीं देते सुन्नत मुअक्कदा पढ़ने का, तो फिर हमने फर्ज के बाद 4 रिकत जो पढ़नी है वो पढ़ें, और फिर 2 रिकत पढ़ें, और फिर जो 4 रिकत छूट गई है ना पहले वाली उसको कजा कर लें, ठीक है ना, उसको मेकअप कर लें 2 रिकत के बाद, ठीक है। और इसकी मकसद यही है इस मेकअप करने का कि ताकि सुन्नत मौकदा की अहमियत जो है ना वो हमारे दिलों से खत्म ना हो जाए, और वो हम अपने जिंदगी से इसको निकाल ना दें जैसे कि कुछ लोगों ने निकाल दिया है। Why is performing an act of the Prophet which he did sparsely, not considering exceptions? Why is performing an act of the Prophet which he did sparsely, not considered an act of sunnah? For example, if one performs rafa yadain as an act of sunnah once for the sake of sawab, is it still not preferable? Nahi, it is preferable. Once aap zarur karein. हैं, तो वंश की बात हो रही है ना, आप सवाल में भी ये पूछ रहे हैं, ये पूछ ही रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम क्या कोई अमल जो कि आप ने एज अ हैबिट नहीं किया, एज अ आदत नहीं किया, लेकिन वंस इन अ वाइल किया, ठीक है, तो उसको वंस इन अ वाइल कर लेना, तो वाई इज इट नॉट प्रेफरेबल? नहीं, इट इज प्रेफरेबल। उलमा लिखते हैं कि जो आपसे सुन ने वंस एन अवाइल किया तो आप भी वंस एन अवाइल कर लेना इसको, ठीक है ना। तो आप उसको सुनना समझ के ना करें, लेकिन वंस एन अवाइल तो आपसे सुन ने किया था ना, सही हदीस से साबित है कि आपसे सुन ने काम किया था, तो ठीक है, तो आप भी ये काम कर लें, ठीक है। जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने ग्रीन अमामा ग्रीन इमामा जो है वो वंस इन अ वाइल पहना था, तो वो ग्रीन इमामा जो है वो हमारे हजरत ने भी वंस इन अ वाइल पहना है, ठीक है, अल्लाह हमें भी पहनने की तौफीक अता फरमा दे, ठीक है नहीं हमारे पास ना वो भी पहनते, ठीक है, और इस तरह की और बाकी ये कि इन्होंने जो मिसाल दी है वो उसमें थोड़ी थोड़ी सी और तफसील कहना नहीं है। जी बताइए।
क्या हुआ कर दे
उसमें इश्गाल पैदा हो जाता है,
तो
हरी पगड़ी पहनना वैसे कोई नाजायज काम तो नहीं है, ठीक है, तो अगर अगर उनसे भी थोड़ी सी मुशाबियत हो गई एक वक्त में तो नाजायज तो नहीं है ना, नबी अलैहिस्सलाम को कॉपी कर रहे हैं। और दूसरा ये कि इतना इल्म जो है ना वो, अब देखें ठीक है आप कोई गलत काम ना करें जो कि आपको देख करके लोग समझें कि ये ठीक काम है, ठीक है ना, तो उसमें तो एक एक कॉज बनती है, आप गलत काम ना करें, आप मुक्तदा हैं, आप इमाम हैं, आप पीर साहब हैं, आप शेख साहब हैं, अगर आप गलत काम करेंगे लोग देख के समझेंगे कि आप सही कर, ये तो सही काम है इसका मतलब है, ठीक है ना, लेकिन एक जायज काम है, ठीक है, और वो नबी अलैहिस्सलाम ने किया था और आप जो है वो सिर्फ एक दफा वो काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वंस इन अ वाइल का मतलब ये नहीं होता कि आप हर हफ्ते पहनना शुरू कर दें, आप हर महीने पहनना शुरू कर दें, आप इवन ठीक है ना अक्सर पहनना शुरू करें, बल्कि बिल्कुल एक दफा आपने किया है, ठीक है, तो भाई कुछ जिम्मेदारी लोगों की भी बनती है, हमने लोगों को बिल्कुल ही फारिग नहीं कर देना कि जाहिली रहो और जाहिली बस तुम दुनिया से रुखसत हो जाओ, ठीक है ना, कुछ जिम्मेदारी अवाम की भी बनती है, दे नीड टू लर्न कि दिस इज नॉट हरी पगड़ी इज नॉट ए कल्ट, ठीक है ना, हरी पगड़ी नबी अलैहिस्सलाम ने पहनी, ठीक है ना, अब आपको नहीं पता तो भाई दिस इज योर प्रॉब्लम, मतलब कुछ चीजें आपकी भी तो प्रॉब्लम है ना, सारे प्रॉब्लम जो है ना वो मौलवियों की तो नहीं होती ना, सारी प्रॉब्लम उठा के मौलवी के सर पे, ठीक है ना, भाई तुम्हारी भी तो कोई प्रॉब्लम है, अब तुम अगर नहीं इल्म हासिल करना चाहते इतना भी तो फिर गो डील विद इट यार, गो मेस विद इट व्हाटएवर, एनीवे तो हजरत रफ़ेदैन सुन्नत है और हमें करना है, अल्लाह के बंदे मैं ये कब कह रहा हूँ यार रफ़ेदैन सुन्नत है, किसने कहा कि वो सुन्नत है, ठीक है, रफ़ादैन की बात कब हो रही है, सही है, तो रफ़ादैन जो है भाई हमारे नज़दीक सुन्नत नहीं है ना, ठीक है ना, यानी हमारे जो फुकहा हैं उन्होंने प्रूफ किया कि ये सुन्नत नहीं है, सुन्नत जो है वो रफ़ादैन ना करना है, लेकिन सवाल करने वाले ने ये पूछा था कि कभी एक दफा आप कर लें क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने किया था, तो भाई ठीक है एक दफा कर लें, कोई हराम काम को थोड़ी है, कोई नाजायज काम को थोड़ी है, बस इतनी सी बात हो रही है, ठीक है, बात को गौर से सुना करें। अच्छा, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी के बारे में अभी बहुत सारी चीजें रहती हैं जो कि हम इंशाल्लाह वक्त के साथ पढ़ते रहेंगे। जो रजी अल्लाह ताला अन सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन ने सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन ने जो पेशकदमियां फरमाई थी, तो ये याद है काफी दिन हो गए इस बात को सुने हुए कि जब फितनों की सरकूबी से, फितनों का सर कुचलने से अबू बकर सिद्दीक अतान फारिग हुए थे, तो उन्होंने क्या किया था फिर, व्हाट वाज द नेक्स्ट थिंग दैट ही डिड इमीडिएटली, ईरान की तरफ लश्कर भेजा था, ठीक है, सुबह अभी यही कह रहे थे, रोम की तरफ अभी नहीं भेजा था, पहले जो है वो ईरान की तरफ भेजा था, ठीक है, रोम का की बारी बाद में आई थी, उस वक्त भी हमने आपको कहा था और अभी दोबारा से सुन लीजिए कि अबू बकर सिद्दीक अतान ने ये नहीं कहा कि हाँ अभी फितने खत्म हो गए, अब जो है ना मुल्क हमारा है भाई, अब ये मुल्क हमारा है, अब हम इसके अंदर बिल्डिंग्स बनाते हैं, ठीक है ना, अब आप कहेंगे उस जमाने में बिल्डिंग नहीं हो, भाई होती थी बिल्डिंग्स उस जमाने में, ठीक है ना, बाबुल की जो बिल्डिंग्स है ना वो हजारों साल पुरानी बिल्डिंग्स, ये जो एहराम मिस्र है ये हजारों साल पुराने एहराम मिस्र है, ठीक है, और उसके अलावा भी दुनिया के अंदर बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स उस जमाने में भी होती थी, बल्कि उससे बहुत पहले भी होती थी, और भी बहुत सारे काम जो है वो रोमन्स ने भी किए, पर्शियंस ने भी किए, इजिप्शियंस ने भी किए, और जो है वो हबशा वालों ने भी किए, ठीक है ना, अबू बकर सिद्दीक रतान भी अपने एक्सपर्ट्स जो है ना अपने जहीन लोग वहां पे भेज करके वहां से टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट कर सकते थे, ठीक है ना, और मदीना तय्यबा के अंदर जो है ना वो अच्छी अच्छी सड़कें, अच्छे अच्छे बागात, अच्छे अच्छे जो है वो नहरें, अच्छे अच्छे जो है वो बिल्डिंगें और अच्छे अच्छे दूसरे किस्म के चीजें कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। हमारे लिए मुक्तदा कौन है? हु आर द पीपल वी आर सपोज टू फॉलो? द एग्जाम्पल्स ऑफ सहाबाए कराम, ठीक है ना, सहाबाए कराम। अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम का नाम क्यों नहीं लिया? हमारे लिए नबी अलैहिस्सलाम मुक्तदी हैं, मुक्तदा हैं, मुक्तदी तो हम हैं, मुक्तदा नबी अलैहिस्सलाम, ये क्यों नहीं कहते? कोई बताए? उपान और नुमान, मोहम्मद नुमान भाई के अलावा नबी अलैहिस्सलाम का नाम क्यों नहीं लिया? सहाबा हमारे मुक्तदा है। बड़े भी जवाब दे सकते, अभी इतने बड़े नहीं हैं जवाब दे सकते।
क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किया और उनकी तरबियत डायरेक्ट अल्लाह ताला ने की थी, और सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला उनकी तरबियत और उनकी जो ट्रेनिंग है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, जो खुद भी एक बशर है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए सहाबाए किराम फॉलो करने के बाद
अच्छा, इनका सवाल ये है, व्हाट इज द क्वेश्चन? ये सबसे अच्छा सवाल है, व्हाट इज द सवाल? तो सवाल ये है कि हमारे लिए जो बीकन्स ऑफ लाइट, राइट, हमारे लिए जो रहनुमा है वो हमने कहा सहाबाए कराम है, ठीक है ना। सवाल ये है कि हमने ये क्यों नहीं कहा कि नबी अलैहिस्सलाम है, ठीक है, ये सवाल है। तो इन्होंने एक जवाब इसका दिया, ठीक है भाई, ओके, हमने इसको सुन लिया। और भी कोई जगह जवाब देना चाहे? नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को गाइड किया और फिर आगे सहाबा कराम ने हमें गाइड किया। तो
काम सारे स्टूडेंट्स हम
माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया फरहान साहब ने कि नबी अलैहिस्सलाम तो टीचर थे ना, नबी अलैहिस्सलाम तो शेख थे ना, नबी अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी थे ना, ठीक है ना। हम क्या हैं? क्या हम शेख हैं? क्या हम नबी हैं? क्या हम उस्ताद हैं? राइट, हम तो शागिर्द हैं, हम तो मुरीद हैं, हम तो उम्मती हैं, राइट। तो अगर उस मॉडल में, टीचर स्टूडेंट मॉडल में अगर हम देखें तो हम किधर फिट होते हैं? हम तो स्टूडेंट की जगह पे फिट होते हैं ना, ठीक है ना। तो हम तो उसी को फॉलो करेंगे ना जिस जगह पे हम फिट होते हैं, जो हमारे लिए ज्यादा रेलेवेंट हो। अब दिस इज एन अंडरस्टूड रियलिटी कि सहाबा ने जो कुछ किया वो नबी अलैहिस्सलाम से सीख कर ही किया। तो ऐसा नहीं है कि सहाबा को फॉलो करने का मतलब ये है कि नबी अलैहिस्सलाम फॉलो नहीं कर रहे, नहीं, ठीक है, ये मतलब हरगिज नहीं है, क्योंकि सहाबा ने नबी अलैहिस्सलाम से ही सीखा और उन्हीं के सामने अपने अमाल किए। लेकिन हमारे लिए ज्यादा क्लोजनेस किसके साथ है, ज्यादा रेलेवेंस के साथ किसके साथ है? वो सहाबाए कराम के साथ है, ठीक है ना। नबी अलैहिस्सलाम ने 11 11 शादियां की, ठीक है ना। वो आप कहेंगे नहीं, हुक्म है कि जी हम 4 शादियां कर सकते हैं, ठीक है, हुक्म भी है, लेकिन सहाबी उम्मत ही थे, नबी अलैहिस्सलाम के लिए वो एक्सेप्शन थी। और सहाबा का जो अमल है ना वो हमारे लिए रूल है, ठीक है ना, कि हम सहाबा को फॉलो करें। तो इसी वजह आप में से किसी ने एक दफा, नहीं आप, वो किसी और ने किया था, इस्लामाबाद में वो रहते हैं, कि मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं असा लेकर के जो है ना वो चलूं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है असा लेकर के चलना, ठीक है। तो हमने कहा यार मैं इसको कैसे मना करूँ, ये आगे से कहेगा ये तो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है असा, आप कैसे मना कर सकते हैं? लेकिन मुझे पता था कि ये ठीक नहीं है, ठीक है ना, कि ये लड़का जो है ना ये असा लेकर के चलना शुरू कर दे, ठीक है। अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमा दी, कमजोरों के साथ अल्लाह ताला आसानी फरमा देते हैं। तो अल्लाह ताला ने दिल में बात डाली कि भाई असा जो है ना, जब टीचर और स्टूडेंट दोनों साथ होंगे ना, बड़े होंगे सामने, तो छोटे जो है ना वो असा लेकर के नहीं चलते। सहाबा कराम से नबी अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में असा लेकर के चलने का सबूत नहीं मिलता। अगरचे कि जब सहाबा कराम अपनी जगह पे होते थे, वो वहां पे बड़े होते थे, वहां पर वो असा इस्तेमाल करते थे। अभी पिछले दोनों हमारे दोस्तों में भी कुछ डिस्कशन हो रही थी कि हजरत जी दामन रकातुम हमारे जो शेख हैं वो असा लेकर के चलते हैं ना, तो उनके साथ साथ हमारे दोस्त हैं समीर भाई, तो मौलाना निशान भाई, तो दूसरे भाई, ठीक है ना। तो उन्होंने बड़े मजे की बात है, कितना अच्छा लगेगा, कितना अजीब लगेगा कि हजरत जी भी असा लेकर चल रहे हैं और समीर भाई भी असा लेकर चल रहे हैं, मौलाना निशान भी असा लेकर के चल रहे हैं, और शेख बिलाल साहब भी असा लेकर चल रहे हैं, और दूसरे भी असा लेकर, सारे लोग असा लेकर चल रहे हैं, क्योंकि असा तो सुन्नत है। नहीं, सिर्फ हजरत जी असा लेकर के चलते हैं और कोई असा लेकर के नहीं चलता, ठीक है। तो हमारे लिए रेलेवेंस स्टूडेंट्स की, हम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a doctor, a teacher, and a sheikh. But we are a patient, a student, like the Sahaba Karam. Ji, bilkul theek aapne farmaya. Acha, Nabi alaihi salatu wasalam saw sallallahu alaihi wasallam nabi hain aur hum normal insaan hain. Matlab hum ummati hain, normal insaan. Aap sallallahu alaihi wasallam bhi normal, bahut behtareen insaan the. ठीक है, ठीक है, जब आप बोलना. अच्छा, तो सुन्नतों की बात हो रही थी कि जाहिरी सुन्नतें. अच्छा, वो हो गई, सॉरी. अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्होंने तरक्याती इस तरह के काम नहीं किए, बल्कि उन्होंने दीन की हिफाजत का काम किया और दीन के फिर इशाअत का काम किया. और इशाअत का काम जो है वो फिर जिहाद के ऊपर कल्मिनेट होता है. तो उन्होंने जिहाद के लिए जो है वो फौजें रवाना की, पर्शिया की तरफ भी रवाना की और बाद में जाकर के रोमन्स की तरफ भी रवाना करी. ज्यादातर जो जंगें थीं उनमें जो जो लीडर होते थे वो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ही होते थे, लेकिन और सहाबा को भी वो अमीर बना करके लश्कर रवाना करते थे. ठीक है. अच्छा, ईरान के बारे में तो हमने पहले भी पढ़ लिया था, रोम के बारे में हमने नहीं पढ़ा था. तो जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रोम की तरफ लश्कर भेजने का इरादा किया, तो आपने सबसे पहले हेराकल, हेराक्यूलस जो रोम का एम्परर का टाइटल होता है, हेराकल, तो उसको जो है ना वो खत लिखा कि भाई तुम मुसलमान हो जाओ तो फिर हमारा तुम्हारा झगड़ा खत्म, हम तुम भाई हो जाएंगे, बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे. और अगर तुम मुसलमान नहीं होना पसंद करते हो तो फिर तुम जिजिया देने के लिए तैयार हो जाओ, यानी हम तुमसे टैक्स लेंगे जिसके बदले में हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे. ठीक है ना, हर किस्म की प्रोटेक्शन तुम्हें मिलेगी, तुम जो है ना वो इबादतें भी अपने इबादत खानों के अंदर कर सकोगे, तुम्हारी जान भी जो है वो हमारे लिए कीमती होगी, तुम्हारा माल भी जो है हम उसकी भी हिफाजत करेंगे, तुम्हारी इज्जत की भी हम हिफाजत करेंगे, बस तुम हमें एक टैक्स दे देना, जो कि बहुत ज्यादा होता नहीं था. ठीक है, बहुत ही लाइक एक नॉर्मल सी अमाउंट होती थी. तो ये कर लो, या तो मुसलमान हो जाओ या जिजिया के लिए राजी हो जाओ. और अगर तुम इन दोनों के लिए राजी नहीं होते ना, तो फिर क्या होता था, तलवार हमारा और तुम्हारा फैसला करेगी. ठीक है, मैदान जंग के अंदर आ जाओ. तो हेरकल ने जो है वो साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैं तो मुसलमान नहीं होता. ठीक है, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने उसके बाद फिर ना, बल्कि उससे पहले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने हिरकल को खत लिखने से पहले बड़े बड़े जो सहाबा कराम थे उनको मशवरे के लिए बुलाया. ठीक है, क्योंकि रोमन्स जो थे ना, ये उस जमाने की सबसे बड़ी सुपर पावर थे. पर्शियंस भी थे, लेकिन पर्शियंस को रोमन्स जो है वो एक वक्त जो है वो रिसेंटली डिफीट कर चुके थे. तो इस वक्त जो सबसे प्रोमिनेंट थे ना वो रोमन्स ही थे, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जमाने में. ठीक है, रशियंस जो है वो है, लेकिन वो रशियंस जो है वो एक तरह से डिफीटेड हो चुके हैं. ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज भी थे और इनकी बड़ी अजीब अजीब इनकी क्वालिटीज हैं जो कि आज तक मौजूद हैं इनके अंदर. ठीक है, क्या हो गया?
सवाल ये था कि आपने इस समय बताया कि जो लड़ाई होती आखिरी रहती कि दरबार हमारी मदद करनी चाहिए, तो अगर मुसलमानों को शिकस्त हो जाती थी तो सब फिर वो दोबारा एक्सेप्ट करी थे तो दोबारा हमला करते थे।
क्या है वो, पलट के झपटना, झपट के पलटना, लहू गम करने का है ये बहाना. ठीक है, जहां में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, जहां में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले. ठीक है ना, तो वो डूबते हैं ना, यानी बदायर उनको शिकस्त मिल जाती है ना, तो वो चैन से बैठते नहीं है, बल्कि वो फिर इधर से निकल आते हैं, फिर उधर डूबते हैं, तो इधर से निकल आते हैं. वो सूरत खुर्शीद जीते हैं. खुर्शीद साहब किसको कहते हैं? अंकल खुर्शीद सूरज को कहते हैं. सूरज खुर्शीद वो डूबता है ना, तो अगले दिन फिर से निकल आता है, फिर उसके बाद डूबता है, फिर से निकल आता है. ठीक है, तो जिहाद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस उम्मत के अंदर कभी भी खत्म नहीं होगा, हत्ता के ईसा अलैहिस्सलाम या मेहदी जो है वो दुनिया के अंदर आ जाए, ईसा अलैहिस्सलाम आ जाए, इस तरह से. ठीक है जी.
आपने वो सुना कि दूसरा दरवाजे की बात हो चुकी है।
अच्छा, रह गई थी, सॉरी. हाँ, वो 2 मिनट रह गए, तो अच्छा आपने याद दिला दिया उससे पहले, कि पहला दर्जा है वो दर्जा सुन्नतों का है जाहिरी सुन्नतें, ठीक है। दूसरा दर्जा सुन्नतों का है नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक, मैनरिजम्स, ठीक है ना। नबी अलैहिस्सलाम के जो अच्छे अखलाक थे, नबी अलैहिस्सलाम की जो लोगों की फिक्र थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन अंदाज से जो है वो इन्नकल आला खुलुकिन अजीम, बेशक आप सबसे सबसे अजीम अखलाक के ऊपर फायज हैं, ठीक है। तो अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये सुन्नतों का दूसरा दर्जा कहलाता है, और सुन्नतों का तीसरा दर्जा क्या है ये कहलाता है, चले अंकल से भी कुछ पूछ लेते हैं,
कैफियत
कैफियात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, कैफियात के लिए अंग्रेजी लफ्ज बताएं तो स्पेशली जो साइंस क्लास में थे, अगर उनको याद है तो, इमोशंस, जज्बात, ठीक है, जज्बात एंड इमोशंस, ठीक है ना। तो क्या बताया था, कौन से इमोशंस? जी ठीक है, ला मरगूबी इल्लल्लाह, ला मतलूबी इल्लल्लाह, ला महबूबी इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये है नबी अलैहिस्सलाम की कैफियत। कोई मेरे लिए मरगूब नहीं है, आई डोंट हैव ए लॉन्गिंग फॉर एनीथिंग एक्सेप्ट अल्लाह, ठीक है ना। आई डोंट हैव ए डिजायर फॉर एनीथिंग एक्सेप्ट अल्लाह, आई डोंट हैव लव इन माई हार्ट फॉर एनीथिंग एक्सेप्ट अल्लाह, एंड आई डोंट वर्शिप एनीथिंग एक्सेप्ट अल्लाह, ये है कैफियात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना। तो फिर बाकी सब क्या है? और ये क्या है, और ये क्या है, और ये क्या है जिसमें हम बैठे हुए हैं, और ये क्या है जिसको हम पहने हुए हैं, और ये क्या है, और ये क्या है, ये सब क्या है? ये मरगूबियत है मेरी, ये महबूबियत है मेरी, राइट, ये माबूदियत है मेरी, इंटरनेट, राइट, ये क्या है,
अच्छा
ये जरूरत है मेरी, ये सिर्फ मेरी नीड्स हैं, ठीक है ना, टू गेट बाय, ठीक है ना, इस दुनिया की जिंदगी को गुजारने के लिए, इस दुनिया की जिंदगी में अल्लाह को राजी करने के लिए, खुश करने के लिए और जन्नत कमाने के लिए ये मेरी जरूरत है। मैं इनके ऊपर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत सहाबा, आदाब, कसस नबीयीन जो अब शुरू होने वाली है, मैं इनको इस मकसद से इस्तेमाल करता हूँ ताकि मुझे अल्लाह की रजा मिल जाए। ये जरूरत है, जरूरत से ज्यादा इनकी कोई हैसियत नहीं, मरगूबियत नहीं होनी चाहिए मेरे दिल में, मरगूबियत तो अल्लाह, ठीक है ना, और अल्लाह के निस्बत से जितनी चीजें हैं उनके लिए मरगूबियत, ठीक है, जिनको अल्लाह ताला, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किताबुल्लाह और हलाल रिस्क और हलाल फैमिली, राइट, बीवी, बच्चे, शौहर, ये सब अल्लाह की निस्बत से इनका ताल्लुक, ठीक है। तो अल्लाह की निस्बत के साथ फिर इसमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जरूरत के दर्जे में, जरूरत से आगे इनकी कोई हैसियत नहीं है। अजीब, माफ कीजिएगा नवाज साहब आपसे, एक आज सुबह ही जो है ना, ये क्या कहते हैं वारे दुआ क्या क्या कहते हैं उसको, तो कल परसों बात हो रही थी आप बच्चों से भी और बड़ों से भी, कि जो ये गैजेट्स है ना, ये कौन सी कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं, ये हैवानात में ताल्लुक नहीं रखते, ठीक है ना, ये नबातात से ताल्लुक नहीं रखते। हैवानात अल्लाह क्रिएशन, नबातात अल्लाह क्रिएशन, ये किसकी क्रिएशन है, ये ह्यूमन बीइंग्स की क्रिएशन है, ठीक है ना, और ह्यूमन बीइंग्स क्या क्रिएट करते हैं, गंद ह्यूमन बीइंग्स क्या क्रिएट करते हैं, आप इतने खुशबूदार फल खाते हैं, राइट, इतने मजे मजे के जो है वो खाने खाते हैं, इतनी अच्छी जो है वो सब्जियां खाते हैं, क्या क्रिएट करते हैं फिर जिसको कि आप सूंघना भी नहीं चाहते, ठीक है ना। तो आवर बाय प्रोडक्ट मोस्टली इट्स फिल्थ, मोस्टली इट्स फिल्थ, मोस्टली इट्स फिल्थ, इंशाल्लाह कोई उसके बाद भूलेगा नहीं, तकरार, अल इल्मु यजीदु बित तकरार, ठीक है। तो इसको देख करके कौन याद आता है, अल्लाह जानवर को देख के तो अल्लाह याद आ सकता है, राइट, और प्लांट को देख के तो अल्लाह याद आ सकता है, इसको देख करके तो कौन याद आता है, एलॉन मस्क या मार्क जुकरबर्ग बदबخت, राइट, इस किस्म के लोग याद आते हैं जिन्होंने इस किस्म की खराफात हेल फोन को क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये जमादात में से आती हैं, और जमादात के लिए आप एक लफ्ज अरबी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हजर गलत, हजर राइट, ब्लैंक, हाँ मतलब हिजर तो नहीं है ना, हजर है, हाँ हजर ठीक है। कुरान मजीद की आयत क्या है जो सुबह सुबह जो है ना वो एक भाई से आपके आपके बात हो रही थी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने अहलो आयाल को अपनी फैमिली को आग से बचाओ। आग याद है ना, खुलूद फिन नार और दुखूल फिन नार राइट। अल्लाह ताला फरमाते हैं कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, आगे क्या फरमाते हैं, आगे क्या फरमाते हैं राइट, इनसे पूछ लेते हैं। वकूदुहन नासु वल हिजारा, हिजारा ठीक है ना, पत्थर की जमा जो है ना वो हिजारा, उस जहन्नुम की आग का ईंधन, उसका फ्यूल कौन होंगे, इंसान होंगे और जमादात होंगे। वहां पे हैवानात नहीं जाएंगे, वहां पे नबातात नहीं जाएंगे, लेकिन जमादात जाएंगे वहां पे। तो हम जिनकी मोहब्बत में इस दुनिया की आग में जल रहे होते हैं ना, वो हमारे साथ जहन्नुम की आग में भी डाल दिए जाएंगे। वकूदुहन नासु वलहिजारा, कोई और नहीं फरमाया, कोई और बात नहीं फरमाई। अच्छा ये बात, इसके बाद अपने आप को और अपने घर वालों को बचाओ। अब मैं तो इससे यही इशारा लेता हूं, अपने बच्चों को गैजेट से बचाओ, अपने बच्चों को इंटरनेट से बचाओ, अपने बच्चों को स्मार्टफोन फोन से बचाओ। ये तुम्हारे बच्चों को भी जहन्नुम में लेकर के जाएंगे। हमारे हजरत बिल्कुल यही बात करते हैं, ये हेलफोन जो है ना इसकी वजह से सबसे बड़ी तादाद में इंसान जो है ना वो जहन्नुम में जाएंगे इस फोन की वजह से, ठीक है ना। तो कुरान से भी एक इशारा मिल गया इसके ऊपर, ठीक है, ये तुम्हारे बच्चों को भी जहन्नुम में लेकर के जाएंगे और खुद भी जहन्नुम में जाएंगे, ये जहन्नुम का ईंधन बनेंगे, ठीक है ना। हाँ जब बड़े हो जाओगे, जरूरत की वजह से और मेच्योरिटी आपके अंदर आ जाएगी ना, जब तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल मेच्योरिटी आ जाएगी, रूहानी मेच्योरिटी आ जाएगी ना, फिर उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करेंगे और उसको इस्तेमाल की हद तक रखेंगे। लेकिन इमेच्योर इंसान वो इसको इस्तेमाल की हद तक नहीं रख सकता, जरूरत की हद तक नहीं रख सकता, वो इसके साथ ही फिर जहन्नुम का ईंधन बन जाता है। अल्लाह ताला हम सब की, आप सब की हिफाजत फरमाए, वाखिर दुआ है ना, अलहम्दुलिल्लाह।